ہی ذرا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، مختلف نقاط اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ایک سوال لکھیے، میرے بازار جانے کی عموماً کیا وجہ ہوتی ہے؟ نمبر ایک، ضرورت کے لیے جاتی ہوں. نمبر دو، خواہشات اور صرف شوق پورا کرنے کے لیے جاتی ہوں کہ بازار میں کیا نیا آیا ہے جس کو کہتے ہیں. اگلا نقطہ، ونڈو شاپنگ کے لیے جاتی ہوں، چلے دیکھتے ہیں نا، یہ کیا پتہ ہے تو حریص اور للچائی نظریں ہیں کہ دیکھنے جا رہے ہیں. ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا، تو کیا فائدہ دیکھنے کا اگر لینا ہی نہیں. زندگی اتنی قیمتی ہے، آپ اس طرح جا کر شاپنگ کے نام، اور شاپنگ بھی نہیں کرنی صرف دیکھنے کا چسکا. چلیے دوسرا سوال کیجئے خود سے، دعوتوں میں جاتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں، کیا ہر دفعہ نیا جوڑا سلواتی ہوں یا پہلے سے پہنا ہوا جوڑا پہن کر جاتی ہوں؟ دیکھیے اگر آپ کے پاس تین جوڑے ہیں، آپ ایک آج پہنیے، ایک کل پہنے، ایک پرسوں پہنے، پھر اگلے دن وہی پہننا شروع کر دیں، الحمدللہ لوگوں کو یقین تو آ جائے گا نا کہ آپ کا اپنا ہے. اکثر میں کہتی ہوں کہ ایک جوڑا دو بار تو پہنیے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ آپ نے کسی کا پہنا تھا. ایک بار کسی سے لیں گے، دوسری بار تو شرمندگی ہوگی. تو یہ صرف اپنے دماغ کی ایک بات ہوتی ہے. پھر صرف دعوت کرنے کی عمومی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب میں کسی کی دعوت کرتی ہوں اور خاص طور پہ دوستوں کی، تو نیت کیا ہوتی ہے؟ چار سوال ہیں اس میں. نمبر ایک، لوگوں کو کھانا کھلاؤں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے کھلاتی ہوں. دکھاوے کے لیے کھلاتی ہوں کہ لوگ دیکھیں کتنی بڑی دعوت کی ہے، یا پھر اپنی تعریف سننے کے لیے کھلاتی ہوں کہ کتنا اچھا کھانا پکایا. اور چوتھی بات، کیا بدلے کے لیے کھلاتی ہوں کہ ہاں کسی نے دعوت کی تو مجھے بھی تو کھلانی ہے. آپ ذرا سا دیکھیں تو اندر کے چور کھل کے باہر آ جائیں گے اس بات کو سن کر. تو پھر اسی طرح تحفہ لیتے اور دیتے وقت اگلے کا خلوص دیکھنا ہے، یا پھر اس کی قیمت کیا دیکھتی ہوں؟ جب مجھے تحفہ ملتا ہے تو قیمت دیکھتی ہوں یا خلوص دیکھتی ہوں؟ اور پسند نہ آنے کے بعد بتاتی ہوں کہ مجھے ایسا تحفہ دیا. پھر اسی طرح اپنے سے ایک سوال کیجئے کہ کریڈٹ کارڈ لیتے وقت اس کو ضرورت کے لیے لیتی ہوں یا معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہوں؟ کیا کریڈٹ کارڈ سے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تو خرچ نہیں کرتی؟ نعمت ملنے پر آپے سے باہر تو نہیں ہو جاتی؟ یا نعمت کا شکر ادا کرتی ہوں اور نعمت کی جواب دہی کا احساس رکھتی ہوں؟ ہم اپنے آپ کو جتنا ٹٹول لیں گے اتنا ہی مرض کا پتہ چلے گا. آج لوگ دین کے لیے وقت کیوں نہیں نکال پاتے، آج دین کے لیے کیوں مال نہیں ہے، اس کی وجہ بتر ہے. ہماری زندگی سے دکھاوا نکل جائے، ہم سکون سے سانس لے سکیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. تو آپ کو یقیناً ایسے ہی لگا ہوگا کہ یہ تو ہمارے لائف سٹائل کے اوپر بہت ہی تنقید ہو گئی، لیکن سچ ہے، جتنا بھی کوئی اس کو مان جائے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. سورۃ انفال کی آیت 59 اور 60. جنگ کے ضمن میں ایک بات پتہ چلی کہ اسلحے کا استعمال تو پسندیدہ نہیں، ہاں اس کی نمائش کی جا سکتی ہے. چونکہ عنوان بتر ہے اس بارے کا، بتر جائز ہے، ایک صرف ایک بتر جائز ہے، اور وہ ہے دشمن کے مقابلے پر اپنی طاقت کا اظہار. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو میدان جنگ میں اکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمایا، اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، ہاں مگر میدان جنگ میں اچھی لگتی ہے. دشمن پر روب ڈلتا ہے. کیونکہ دیکھیے نا کہ آپ اس کو آج ایسے سمجھے کہ آپ اپنے اسلام کی خوبصورتی کے لیے دکھائیں، اور اللہ جانتا ہے میں نے اس پہ کئی دفعہ زندگی میں عمل کیا، ہر دن ہی یہ سوچ کے سب سے اچھا پہننا، اچھے رنگ روپ، اچھے رنگ ڈھنگ میں دین کے لیے نکلنا کہ لوگوں کو دکھا دو کہ دین کمزور نہیں ہے اور دین والے بے ڈھنگے نہیں ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پہننا بھی پھر اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. جس کی جتنی قدر ہوتی ہے نا دل میں، آپ اسی کے لیے تیار ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب مسلمان 7 ہجری میں عمرہ قضاء کے لیے آئے تو لوگوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ مسلمان تو مدینہ جا کر بڑے کمزور ہو گئے ہیں. مسلمانوں کو اس کی خبر مل گئی تو انہوں نے سوچا کافر تو یہ سن کر بہت خوش ہوں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم عمرے کے لیے جاؤ تو پہلے جو طواف ہے، پہلا طواف جو، تو اس میں رمل اور استباء کرو، پہلوانوں کی طرح چلو اور ان کو چل کر دکھاؤ کہ ہم میں بڑی طاقت ہے. جب مسلمانوں نے رمل اور استباء کیا تو ان پر روب طاری ہو گیا اور وہ گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے. تو یہ بتر جائز ہے، سمجھ گئے؟ یعنی جہاں اسلام کی عزت ہے، دین کی عزت ہے، اس کے لیے کھائیں پئیں پہنیں اوڑھیں، لوگوں کو دکھائیے کہ دین والے بہت خوش ہوتے ہیں. آپ کی خوشی دیکھ کر لوگوں کو رشک آئے کہ اچھا یہ دین پہ اتنے خوش ہیں تو ہم بھی دین پہ آ جاتے ہیں. देखिए, मुस्कुराते हुए लोग दीन सिखाएंगे तो लोगों को दीन मुस्कुराता हुआ लगेगा। खूबसूरत लोग दीन सिखाएंगे, लोगों को दीन खूबसूरत लगेगा। पैसे वाले लोग दीन सिखाएंगे, लोगों को दीन पैसे वाला लगेगा। आज हमने दीन को मुर्दा और गरीब और चूड़ा मुड़ा बना के दिखा दिया। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। फिर इस तरह अगर बतर करते हैं तो गैर मुस्लिमों के सामने करें, इनको अपना इस्लामी कल्चर दिखाएं। सूरत अनफाल के अंदर गज़वे बदर का जो जिक्र है, इसी तरह सूरत तौबा के अंदर गज़वे तबूक का जिक्र है, और दोनों बहुत जंगें बड़ी थी, पहली जंग थी और आखिरी भी थी। तो आगे सूरह तौबा शुरू होती है बग़ैर बिस्मिल्लाह के। इससे पता चलता है कि जहाँ अल्लाह के नबी ने नहीं लिखाई, हम भी नहीं लिखाएंगे। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के आखिरी दौर की सूरतों में से ये सूरत है। इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं होती, अल्लाह के नबी ने नहीं लिखाई, तो फिर हम भी नहीं लिखेंगे। ना कमी करेंगे कुरान में, ना इजाफा। इस सूरत में मुशरिकीन से किए हुए माहदे टूट रहे हैं और अल्लाह के नबी की सीरत बहुत नुमाया है। ख़ुलासा क्या था आपकी सीरत का? कि अल्लाह के नबी 13 साल मक्का में रहे, खाना काबा बुतों से भरा हुआ था, लोग अपने बातिल तरीक़ों के मुताबिक बरहना होकर तवाफ़ भी करते थे, हज के अंदर अपनी सारी बातिल चीज़ें भी पूरी करते थे। इसके बाद रसूलुल्लाह मदीना चले गए और मदीना जाने के 8 साल बाद मक्का फ़तह हुआ। 9वें साल में अब यह हुक्म आ रहा है कि इसके बाद 4 महीने की मोहलत दे दो और इनसे कह दो कि आओ भाइयों, मस्जिद में इस्लाम सीखो, मुसलमान हो जाओ, अगर नहीं तो इसके बाद मक्का की हद से चलो। 4 माह की मोहलत देकर आप देखिए उनको जाने का हुक्म दिया था। इस्लाम तदरीज चाहता है, खड़े खड़े किसी को पकड़ कर नहीं निकालता। मुर्गी भी ज़िबा करने में मरहले हैं कि पहले रग काट के छोड़ दो। तलाक़ भी 3 माह में पूरी होती है, तो इस्लाम में धाड़ सानी कोई फ़ैसला नहीं होता। और क्या कहा कि अगर इसके बाद नहीं मानोगे तो फिर यहाँ नहीं रहोगे, तुम ना पाक हो। बड़ा गहरा असूल है। क्या के गुनाहगार को मोहलत दो, हम पहले ही फतवा देना शुरू करते हैं, ये हराम ये हलाल। नतीजा क्या होता है कि लोग घबरा जाते हैं और वो दीन छोड़ देते हैं। इस आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला का कलाम सुनो। अल्लाह का कलाम दिलों की दवा है। दिल में कुफर की बीमारी हो, निफाक की बीमारी हो, फिस्क की बीमारी हो, जितनी भी बीमारियां दिल की हैं, इन सब का इलाज एक ही है कि सब को अल्लाह के कलाम से जोड़ दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ लाने वाले बन जाएं। बोलिए आमीन। सूरह तौबा की आयत 23-24 में जो चीज़ें इंसान को कुर्बानियों से रोकती हैं उसका तذکرہ है। कह लीजिए कि हमारे वीक पॉइंट्स, कमज़ोर पहलू हैं हर बंदे के। अल्लाह ताला से ज़्यादा अजीज़ होने का मतलब कि अहब इलैकुम मिन अल्लाह, क्या मतलब है कि इंसान की ज़िंदगी में दो तरह के तकाजे होते हैं, एक दीन का और एक दुनिया का। दीन के तकाजे अल्लाह ताला और उसके रसूल के रास्ते में मेहनत के तकाजे हैं, और दूसरे तकाजे वो होते हैं जो दुनिया के हों, जो कहीं रिश्तों के नाम पर तो कहीं जिम्मेदारियों के नाम पर। आम हालात में ये दोनों चलते रहते हैं, कोई हर्ज नहीं होता। इन दोनों को पूरा करना हमारा फ़र्ज भी है और दोनों में अजर भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों के दरमियान टकराव आने लगता है। एक ही वक्त पर हमें अल्लाह का दीन भी बुला रहा होता है और उसी वक्त हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमें अपनी तरह बुला रही होती हैं। मसलन नौकरी है मर्दों की, औरतों के मेहमान हैं, घरदार ही हैं। अब इस वक्त इंसान वो चीज़ मुंतखब करता है जिससे उसका दिल जुड़ा होता है। आप बताइए, न्यू बॉर्न बेबी हो तो उसको इग्नोर करके मेहमानों को देखते रहेंगे, खाने पकाते रहेंगे? नहीं, बस जिस तरह बेबी में दिल अटका होता है ना, इस तरह इस कुरान और इस दीन के काम में दिल को अटका लीजिए। इसमें हम सब अपना मुहासबा कर सकते हैं कि कहीं दीन की कीमत पर दुनिया तो हासिल नहीं कर रही, अल्लाह की नाराज़गी की कीमत पर रिश्तेदारों को तो राज़ी नहीं कर रहे। क्या घर की मोहब्बत मुझे जन्नत के घर की मोहब्बत से ज़्यादा तो नहीं? क्या मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी की ज़रूरियात को दीनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पे तरजीह तो नहीं दे रही? ये सवाल आपके लिए कड़वे सच होंगे। उगल लीजिए या निगल लीजिए, अभी वक्त है, कल वक्त नहीं होगा। इसके बाद देखिए आयत 25-26 में ग़ज़वे हुनैन का जिक्र है। इज़ा जबतकुम कसरतकुम, ये वो वाहिद जंग है जिसमें मुसलमान कसीर तादाद में जमा हो गए थे। 12,000 के करीब मुसलमान थे दुश्मनों के मुकाबले में। मुसलमानों में उजब पैदा हो गया, पीछे पढ़ा ना आपने, उजब खुद को सराहना, और उजर के बाद उजब के बाद ही बतर आता है। ये कैफियत है जिसमें इंसान को अपना बहुत अच्छा लगने लगता है। अब हुआ क्या कि मुसलमानों के पास बहुत ज़्यादा असबाब और वसाइल थे, तो इनके दिल में ये ख्याल आ गया कि लो अब तो हम जीते ही जीते, ये कैसे हो सकता है कि हम हार जाएं? पहले हम 313 थे, अब तो 12,000 हैं। ये कैसे हो सकता है कि हारे? अल्लाह को ये बात पसंद ना आई और मुसलमान जंग हारने लगे, यहाँ तक कि पीठ फेर कर भागे। इससे पता चलता है कि वसाइल कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह की मदद ना हो, और इनके होते हुए भी इंसान बेकार हो जाते हैं। और जूँ ही सहाबा कराम ने महसूस किया कि हमारी ज़ुबान से कुछ नापसंदीदा बोल निकल गए, तो फ़ौरन पीछे हो गए। ये होता है असल में तकवा, के बंदे को अपनी गलती नज़र आने लगे। फिर आयत 36 से मुशरिकीन की बिदत का जिक्र है। आदत क्या थी कि कैलेंडर को तब्दील कर देते थे, यानी मौसम के एतबार से इबादात को सेट करते थे। जब इनका लड़ने को दिल चाहता और अगर वो महीना हुरमत का होता तो कहते नहीं नहीं इस साल हुरमत का महीना पीछे है और ये महीना आगे है, मतलब फरवरी को जनवरी कर दें और जनवरी को फरवरी कर दें। ऐसा अपने फ़ायदे के लिए करते थे, और इसी तरह हज को हमेशा ठंडे मौसम में लाने के लिए भी करते थे। अल्लाह ताला ने कहा ये अपनी मर्जियाँ छोड़ दो। और उसके बाद फिर आए 38 से लेकर सूरत के आखिर तक, जो अगले पारे में भी हम इंशाल्लाह देखेंगे डिटेल से, ग़ज़वे तबुक की बात है। दो तरह की आयतें हैं, कुछ वो जो ग़ज़वे तबुक के सफ़र से पहले की हैं और कुछ ऐसी हैं जो तबुक के सफ़र के बाद की हैं। तबुक क्या थी अगर चंद लफ्ज़ों में बयान कर दिया जाए तो शायद हम सारी आयतों को समझ लें, और इसको पढ़ते वक्त साथ साथ अपने मुहासबे के नुक्ते भी नोट करते जाएं कि आज हमारी ज़िंदगी में तो कोई ऐसी तबुक नहीं है। क्या हुआ था? हुआ यह था कि मदीना में आने के बाद सारी ज़िंदगी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिहाद हुए वो सिर्फ़ मक्का और इर्द गिर्द के लोगों से थे। मुशरिकीन जो थे वो सब ख़ानदानी लोग थे, अपने ही लोग थे, लेकिन रसूलुल्लाह का आखिरी दौर था। 10 हिजरी के करीब वहाँ मुसलमानों को ख़बर मिली कि गैर मुस्लिम हुक्मरान जो इस वक्त की सुपर पावर है वो मुसलमानों पर हमले की तैयारियाँ कर रहे हैं। बसरा से इसको तसव्वुर की आँख से देखिए, एक छोटा सा मुसलमान मुल्क है, अभी आज़ाद हुए 10 साल भी नहीं हुए, ख़बर क्या मिल रही है कि दुनिया की सुपर पावर मिलकर हमले की तैयारियां कर रही हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाई क्या आएंगे हम जाते हैं, चलो जमा हो जाओ। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब जमा हो जाओ तो हर बंदे पर जिहाद फ़र्ज हो गया था, अगर नहीं जाता तो गुनाहगार होता है। और आजमाइश कैसी कि सख्त गर्मी का मौसम, फसलें तैयार, पूरे साल की मेहनत पाने का वक्त, और गर्मी का मौसम, खुश्क साली का मौसम, और एक महीने की मुसाफत पे जाना। अपने दिल पे लीजिए, क्या हम दीन के लिए सफ़र करते हैं? इस वक्त सऊदी अरब से शाम या रोम का सफ़र आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के पास कितने ऊँट थे, एक ऊँट 18 लोगों के हिस्से में आया, 17 लोग चलते फिर एक की बारी आती और 17 लोगों के बाद दूसरे की बारी आती। ये वो वक्त था जब आपका ये फरमान कि सब निकल जाओ फर्ज़ आइन था, उस वक्त जिहाद लोगों के निफाक को खोलने लगा। याद रखिए निफाक उस कीड़े की तरह जो आम हालात में छुप जाता है, नज़र नहीं आता, ये तो मुश्किल हालात में दिखता है। मुनाफिक भी नमाज़ें पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, हज करते थे, ज़कात भी देते थे, लेकिन अल्लाह ताला इस कीड़े को बाहर लाने के लिए कोई ना कोई सूरत पैदा कर देते हैं। आज भी आपके मेरे लिए अमली इम्तहान आते हैं ना, तो वो मेरे आपके ईमान का इम्तहान होते हैं। ये वक्त मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की रहमत से बहुत आसान था, कोई चीज़ इनको रोक ना सकी, किसी ने फिक्र ना की, घर खुले थे, बीवी बच्चे छोड़ दिए, कहा कोई बात नहीं, अपने ऊपर लीजिए, हमारे घर हमारे पाँव की बेड़ियाँ तो नहीं हैं। हाँ, लेकिन जो मुनाफिक थे उनके उज़र बहाने शुरू हो गए। आप और मैं मुहासबा कर सकते हैं, जब अल्लाह की राह में मुझे बुलाया जाता है तो क्या मेरे पाँव बोझल तो नहीं हो जाते? क्या मैं दुनिया के मुकाबले में आखिरत की ज़िंदगी को पसंद तो नहीं करती? क्या मुझे इस बात का यकीन है कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया बहुत कलील है? अल्लाह अकबर। और आयत 40 में इस वक्त का जिक्र है जब अबू बकर सिद्दीक ने 3 रातें अल्लाह के नबी के साथ गारे सौर में गुजारी। इस रिफाकत ने अबू बकर सिद्दीक की नेकियों को कितना बढ़ा दिया। एक रिवायत में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी के साथ खुले आसमान में थी, लाट में कहने लगी अल्लाह के नबी को ऐसा है जिसकी नेकियाँ आसमान के सितारों जितनी हों। नोट कीजिए, जो चीज़ दिलों में होती है ना वही ज़ुबान पर है। आज की बीवी होती तो पूछती किसी के डॉलर्स हैं आसमान की सितारों जितने? इल्ला माशाल्लाह। कहाँ हाँ हैं, और वो उम्र फारूक हैं। हज़रत आयशा का दिल बुझ गया, वो तो सोच रही थी कि आप मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लेंगे। जब दिल की बात ज़ुबान पे आई तो आपने फरमाया आयशा तुम अबू बकर की नेकियों की बात करती और मेयार बनाती हो आसमान के सितारों को। हालांकि अबू बकर की सिर्फ इन 3 रातों की नेकियां जो उन्होंने मेरे सत्कारे सौर में गुजारी, उम्र फारूक की सारी जिंदगी की नेकियों पे भारी हैं। क्यों? सवाल पैदा होते, लिखिए। देखिए, एक ही नेकी होती है लेकिन हालात इनकी कीमत बदल देते हैं। मसलन 1 डॉलर होता, मुख्तलिफ हालात में इसकी अहमियत बढ़ जाती है ना। आजकल तो वैसे करेंसी ऊपर नीचे जाती है तो रेट बदल जाते हैं। आपकी जेब में 1000 डॉलर हैं तो 1 डॉलर शायद आपको मामूली लगे, किसी बच्चे को भी दे देंगे। और एक वो वक्त होता है जब जेब में सिर्फ 1 डॉलर होता है, जिसको बस में जाने के लिए टिकट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब फ़र्क हो गया ना कीमत का। लिखिए, हाईलाइट कीजिए इस जुमले को, दिल की तख्ती पे लिखिएगा इसको। नेकियों का मौसम होता है, ज़रूरत के साथ नेकियों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जब भी इस्लाम आगाज़ में होता है, जैसे आजकल आप अपने इस काम के आगाज़ में हैं, किसी जगह जब दीन का काम इब्तदाई मराहल में होता है, यकीन करें बड़े लोगों के टेंडर खुलते हैं नेकियों के। ला ला के अपने सामान उठा के दे देते हैं, जो अल्लाह के नबी ये ले लो, हमारा नाम लिख जाए कि हमने इस दीन के इब्तदा में काम किया था। बाद में तो बड़ी बहारें आ जाती हैं। इब्तदाई तौर में तो एक एक बंदा कीमती होता है, फिर जब दीन की बहारें आती हैं, हज़ारों लोग इस काफ़िले के साथ चल पड़ते हैं, तो सारे लोग ही साथ चल पड़ते हैं। कुछ लोग सिर्फ कसरत को देख कर चलते हैं, फिर तो फेमस होता है, फिर तो फेम होता है दीन। किस इदारे से पढ़ा, वो इंस्टीट्यूट, वो बड़ा, हाँ बहुत मशहूर है वो, तो वहाँ तो उनके तो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। नहीं, जब थोड़े लोग हैं और आप हक़ की बुनियाद पर आते हैं, कदर उस वक्त है। देखिए, दुनिया के मामले में तो ये चल सकता है, लेकिन दीन कसरत को नहीं मानता। क्या पता चला कि जो चीज़ लोगों के दिलों में मोहब्बत डालेगी, वो अल्लाह की नज़र में मुकाम बढ़ाएगी, वो नेकियां हैं। और नेकियों के वो मौके जब कोई ना हो, और आप करें, हाईलाइट करें, दुआ किया करें, अल्लाह मुझसे वो नेकी करा जो कोई ना कर रहा हो। नई नई नेकियां करवा, यानी बिदात नहीं, लेकिन नई जगहों पर, नए लोगों में, अल्लाह मेरी वजह से लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत के बीज डाल दे। ये आपके करोड़पति होने का वक्त होता है। आजकल भी ये जोहराबाद वालों के करोड़पति होने का वक्त है। अल्लाह करे कि हम इसकी कीमत पहचान सकें। नेकियां करते वक्त कभी थकिए नहीं। हम भी अपना मुहासबा करते हैं, क्या मैं कभी नेकी करते वक्त सोचती हूँ कि ये मेरे हिस्से की नेकी है, मैं इसको ले लूँ? कोई नेकी ज़ाया करता है तो दूसरे के हाथ में चली जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इस दुनिया में सबका हक दे चुका, अबू बकर का हक नहीं दे सका। इनके एहसानात का बदला रोज़े क़यामत अल्लाह चुकाएगा। आज के अबू बकर आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता। हर नेकी में हिस्सा डालिए, हर प्रोजेक्ट में हिस्सा डालिए, हर छोटी बड़ी चीज़ में डालें। यकीन करें, आपके मेरे लिए ये दीन के काम जो इस वक्त दिन रात इसमें आप देखिए कि माल लग रहा है, आपको तो शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं अभी होगा। हिस्से डालिए, आके पूछिए मैं कहाँ हिस्सा डालूँ, मेरा क्या काम है, मेरा कुछ डाल दे, क्योंकि दीन का काम तो हो जाने हैं पर मेरा हिस्सा नहीं डलेगा, नुकसान मेरा है। आप देखिए ना, शेयर आप ना ख़रीदें तो कोई और ले जाएगा, नफ़ा उसको मिल जाएगा। तो जब आपको दीन का काम नज़र भी आ रहा है, ये तो यूमिनून बिलगैब भी नहीं रहा, तो फिर बंदे का हाथ रुके, दिल तंग हो, तो फिर कह लीजिए कि अभी बुखल नहीं गया। तो अल्लाह ताला आपके मेरे दिल को बुखल से बचा दे। फिर आप देखिए कि आप पारे के एंड की तरफ हैं, तो मुनाफिकीन का तस्करा, जब इनको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को कहा जाता है तो कहते हैं अभी हालात तंग है, हाथ ज़रा खुल जाए तो देखें हम क्या कुछ करते हैं, यानी दावे बड़े करते हैं। अब अल्लाह ताला इनको मालो दौलत दे देता है, लेकिन फिर मौका आता है तो इनकी ज़रूरतें भी बढ़ चुकी होती हैं, और कहते हैं तुम्हें क्या पता हमारे कितने खर्च हैं, कितनी जिम्मेदारियाँ हैं। आइए ज़रा अपना मुहासबा करते हैं, क्या हमारा हाल इन लोगों जैसा तो नहीं, जो कहते तो रहते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो फलां काम करूं, सदका करूं, खैरात करूं, लेकिन जब ये काम हो जाता है तो अल्लाह की राह में माल खर्च ना करने के बहाने तलाश करते हैं। दो चीज़ें याद रखिएगा कि दिल में निफाक पैदा करती हैं, एक दौलत का अल्लाह की राह में खर्च ना करना, और दूसरा करें तो खुशी से ना करना। हाय मारे बांधे पकड़ो, फिर लेना तो है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, ये सोच। और दूसरा क्या कि अल्लाह के वादे को पूरा ना करना, क्योंकि जब दिल मुर्दा हो जाता है तो नेकियों की तौफीक छिन जाती है। अल्लाह ने रूमियों के दिल में ऐसा रोब तारी किया कि वो सामने ही ना आए। ग़ज़वे तबूक में मुसलमानों ने 20 दिन तक तबूक के मुकाम पर पड़ाव डाला। ये वो जंग है जिसमें एक तीर नहीं चला, एक तलवार नहीं टूटी, कोई बंदा नहीं मरा, मुनाफिकीन पीछे रह गए, लेकिन जब इनको खबर मिली कि मुसलमान वापस आ रहे हैं, बल्कि बेशुमार माले गनीमत मिला और साथ में तिजारत हुई, और वैसे ही लोग वहाँ तिजारत के लिए जाते थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो जंग के लिए गए थे और अल्लाह ने इनको फ़ायदा दिया। और जब वो वापस आए तो अब मुनाफिकीन को अफसोस हुआ कि हम क्यों नहीं गए, पर अब क्या फ़ायदा, वक्त तो गुजर गया। तो इसके नतीजे में हुआ क्या कि ये लोग अगली जंग में जाने की तैयारियां करने लगे और सोचा हम मरेंगे नहीं, कुछ ना कुछ मामला तो हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, इन्हें दोबारा ना आने दो। इससे पता चलता है, हाईलाइट कीजिए और डरते हुए इसको नोट कीजिए कि जिसको एक दफ़ा आजमा लो फिर इसे दोबारा मत आजमाओ। जो एक दफ़ा नेकी के काम से हट जाए इस पर दोबारा भरोसा नहीं करना। हाँ, अगर वो इकरार करें कि मैंने अपने आप को बदल लिया तो इस पे एतमाद किया जा सकता है, वरना ऐसे लोग दूसरों का हौसला पस्त कर देते हैं, ना खुद नेकी करते हैं ना दूसरों के, डाउट्स कितने डालते हैं। अल्लाह ताला हमें शक वाले जहन से बचा दें। फिर इसी में गज़वाए तबूक के तनाजर में अब्दुल्ला बिन उबई का जिक्र आता है, उसका हाल कुछ इसी किस्म का था। हुआ क्या कि जब गज़वाए तबूक से मुसलमान वापस आए तो इसके फ़ौरन बाद अब्दुल्ला बिन उबई का इंतकाल हो गया। इस बंदे को अगर पता होता कि मेरी मौत इतनी करीब है, हाईलाइट कीजिए, अगर उसको पता होता मेरी मौत इतनी करीब है तो क्या तबूक के सफ़र में फितने उठाता? याद रखिए, कुछ लोग दीन के नाम पे फितने उठाते हैं, दिल का हसद और बुग़्ज़ के किसी तरह ये काम ख़त्म हो जाए। इसने भी यही कुछ किया अल्लाह के नबी के साथ। इसी तरह जब कभी निफाक दिल में आ जाए, या निफाक पर दिल आ जाए और गलत काम करने को दिल चाहे, तो फ़ौरन अपने आप को चेक किया करें और कहा करें कि मेरी मौत ही करीब ना हो, क्योंकि बंदा आखिरी वक्त में जो करेगा इसी बुनियाद पर उठाया जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि इंसान अपने आप को इन चीज़ों से पाक रखे। अब जब वो मरा तो क्या हुआ कि अल्लाह के नबी के दिल में ख्याल आया कि मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूँ। इसका बेटा एक सच्चा मुसलमान था, अब्दुल्ला ही नाम था उसका भी। अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे, मैं मानता हूँ मेरा बाप मुनाफिक था, इसके अंदर खराबियाँ थीं, लेकिन कलमा तो पढ़ता था। आप ऐसा करें कि कुछ इसके लिए दुआ कर दें, आप मुझे अपना कुर्ता दे दें, मैं इसमें इसको कफनाऊंगा। अब अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई के इस एहसान को याद रखा हुआ था जो बदर के मौके पर उसने किया था। हुआ क्या था कि इसका कुर्ता अल्लाह के नबी के चचा हज़रत अब्बास को पहनाया गया जब वो कैदियों में आए थे बदर के। ऊंचे लंबे थे, किसी और का कुर्ता उनको पूरा नहीं आया। उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई का कुर्ता पूरा आया था। आपने इस एहसान को पूरा करने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे को अपना कुर्ता दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई आज तक आपके उसी कुर्ते में दफन है। आप इसकी कब्र में उतरे, इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, लेकिन अल्लाह ने उसको नहीं बख्शा। कुरान में दलील मौजूद है, और किसी के बारे में आप मैं नहीं कह सकते। तो पता क्या चला कि जब तक इंसान के अपने अमल ना हो, कोई चीज़ बंदे को फ़ायदा नहीं देती। जब तक इंसान अपने आप को नेकियों में न लगाए, हम कफन को जमजम के पानी में भिगो लें तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर दिल में ईमान नहीं है। बाज़ लोग खिलाफ़े काबा के टुकड़े रखते हैं, बाज़ लोग कुछ और चीज़ें रखते हैं, कलमे वाली चादरें, नहीं फ़ायदा होगा, अमल से बात बनेगी। जन्नतुल बकी में कई मुनाफिक नुमाल लोग दफन हुए हैं लेकिन नहीं बख्शे गए। तो ज़रूरत है इस बात की कि इंसान अपना मुहासबा करते हुए हर लम्हे नेकियां कमाने की कोशिश करे, ना कि बाद में कुछ चीज़ों को अपने खिलाफ दलील बनाए। और आखिर में फिर आयत 86 से अगली चंद आयतों में दो गिरोहों का जिक्र है। एक वो जो माल और असबाब होने के बावजूद जिहाद में ना जाने के बहाने बना रहे थे, और दूसरे वो लोग जो दिल जान से जिहाद में शिरकत के ख्वाहिशमंद थे लेकिन सवारियाँ ना होने की वजह से ना जा सके। इसमें भी मुहासबा है, क्या मैं जानते पूछते दीन के कामों से पीछे तो नहीं रहती? इस बारे से पता चलता है कि अल्लाह के रास्ते में अक्सर निकलने की जो तौफीक नहीं होती, इसकी सबसे बड़ी वजह बतर है। चाहे वो खाने का बतर हो, पीने का हो, दुनिया को संवारने का और सजाने का, अल्लाह ताला हमको इससे महफूज रखे। और इस बारे में जो बतर की बातें सामने आईं, इनकी रोशनी में अल्लाह हमें अपना मुहासबा करने वाला बना दे। तो ये था 10वां पारा, कितना कुछ इसमें सीख लिया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह आसान करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।